पहला इतिहास अध्याय 22। जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर ने उसकी बलि स्वीकार की है। अध्याय 22 पद 1 से लेकर 5 तक। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इसराइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इसराइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए राज ठहरा दिए। फिर दाऊद के फाटकों के किवाड़ों के किलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदार के पेड़े इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभ्यमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद तू मेरे लिए भवन नहीं बना सकेगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला मनुष्य है। परंतु परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू भवन के बनाने की तैयारी नहीं करेगा। इसलिए दाऊद ने भवन का निर्माण तो नहीं किया, परंतु वो सब किया जो भवन की तैयारी में वो कर सकता था। अपनी मृत्यु से पहले उसने बहुत अधिक मात्रा में लोहा, पीतल, सोना, चांदी और देवदार इकट्ठा किया, परदेशियों को पत्थर काटने पर लगाया और मंदिर का नमूना बनाया। वास्तविक निर्माण कार्य सुलेमान के द्वारा होना था और मंदिर मोरिया पर्वत के साथ बनाया जाना था, जहां उन्होंने स्वर्गदूत को तलवार निकाले खड़ा देखा था। मंदिर का स्थान दूसरे इतिहास में मोरिया पर्वत बताया गया है, इसलिए सुलेमान ने मंदिर मोरिया पर्वत पर बनाया, उसी खेत में जिसको दाऊद ने ऑर्नान से खरीदा था। हमें मोरिया पर्वत का स्मरण है क्योंकि यही इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलि करने को लाया था। ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर इब्राहिम को यहां लेकर आया था। इस पहाड़ पर जो उसने उसे दिखाया, और वो मोरिया पर्वत ही था जो हेब्रोन से 3 दिन की यात्रा पर है, या बर्शेबा से, जहां इब्राहिम उस समय था जब परमेश्वर ने उसे उसके पुत्र को बलि करके चढ़ाने की आज्ञा दी। और मोरिया पर्वत बलिदान का स्थान हो गया, जहां पर इसराइली भी बलि चढ़ाया करते थे। दाऊद ने कहा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है, और वो स्थान मोरिया पर्वत पर था। ये स्थान मोरिया पर्वत के शिखर पर था, मंदिर का स्थान बराबर में सटा हुआ था, शिखर पर नहीं। वो स्थान शायद 3 खंड शिखर से नीचे था। मोरिया पर्वत गुलगुथा या कलवरी का स्थान है, वही परमेश्वर की वेदी बलि का स्थान था, और यहीं पर यीशु मसीह हमारे पापों के कारण बलि हुआ था। इसी विशेष स्थान को दाऊद ने खरीदा और वही उन लोगों ने परमेश्वर का मंदिर बनाया। अध्याय 22 पद 6। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर, उसने इसराइल के लोगों को इकट्ठा किया और अपने पुत्र सुलेमान को बुलाया। अध्याय 22 पद 6 से लेकर 13 तक। इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में इसराइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इसराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, और इसराइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपना परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इसराइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। दाऊद प्रशंसा के योग्य तो है, परंतु उसमें दुर्बलताएं भी है। उसमें एक अच्छे पिता के गुण नहीं थे, इसी कारण अपने पुत्रों के साथ उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सब देखते हुए सुलेमान ने आगे चलकर नीति वचन में संतान के सुधार के लिए बहुत कुछ लिखा। इसी एक विषय में दाऊद सतर्क नहीं था। उसके एक पुत्र ने उससे विद्रोह किया था, और लिखा है, दाऊद ने कभी भी अपने लड़कों को सुधारने के लिए कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें चेतावनी भी नहीं दी, तूने ऐसा क्यों किया, और उसने लड़कों को यूं ही छोड़ दिया, और अंत में वे अपने पिता के विरोधी हो गए। इसलिए सुलेमान ने इस अनुभव के बाद कि उसका पिता बच्चों के अनुशासन में सतर्क नहीं था, ये लिखा। नीति वचन 22 अध्याय 15 पद। लड़के के मन में मूर्ता बंधी रहती है, परंतु छड़ों की ताड़ना के द्वारा वो उसे दूर की जाती है। जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। सुलेमान के पास बच्चों को अनुशासित करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि उसने देखा था कि दाऊद लड़कों के अनुशासन के प्रति ढीला था। परंतु जहां दाऊद अपने जीवन के अधिक समय अनुशासन के प्रति उदासीन रहा, अब इस समय वो सतर्कता से अपने पुत्र सुलेमान को परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देता है। दाऊद ने अपनी संतान के साथ अधिक समय नहीं बिताया, परंतु अब बुढ़ापे के समय जब उसने अपने शासन की बागडोर अपने पुत्र सुलेमान को देनी है, और मंदिर के भवन निर्माण का मुख्य कार्य परमेश्वर के लिए करना है, वो सुलेमान को उत्तम शिक्षा देता है जैसे कभी किसी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दी होगी। अति अद्भुत शिक्षा। दाऊद ने सुलेमान को प्रोत्साहित किया कि वो बुद्धि और समझ प्राप्त करे। मैं समझता हूं इसी कारण जब सुलेमान ने राज्य आरंभ किया और परमेश्वर ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं, निश्चय ही उसने अपने पिता की शिक्षा याद रही होगी। बुद्धि और समझ प्राप्त कर, सुलेमान ने कहा, अपने दास को बुद्धि और समझ दी जाए कि वो तेरे लोगों का न्याय कर सके। यही दाऊद ने सुलेमान को प्राप्त करने को कहा था। जब सुलेमान ने प्रार्थना की और इच्छा जताई कि उसे बुद्धि और समझ दी जाए, परमेश्वर सुलेमान की विनती से प्रसन्न हुआ और कहा, क्योंकि तूने प्रसिद्धि और न संपत्ति मांगी है, परंतु बुद्धि और समझ मांगी है, मैं तुझे केवल यही नहीं देता जो तूने मांगा है, परंतु जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। मैं तुझे अधिक संपत्ति और प्रसिद्धि दूंगा कि तेरा नाम पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। निश्चय ही सुलेमान अपने पिता की मूल्यवान शिक्षा याद रखे हुए था कि उसे बुद्धि और समझ प्राप्त करना है। दाऊद ने कहा, तू परमेश्वर की व्यवस्था को मानता रहे, तभी तू कृतार्थ होगा, और जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा तब तू समृद्ध हो जाएगा। अपने पहले भजन में दाऊद ने समृद्धि को परमेश्वर के नियमों के पालन से जोड़ा है। अन्य बहुत जगहों पर समृद्धि को परमेश्वर के नियमों से जोड़ा गया है। जब मूसा ने कार्यभार यहोशू को सौंपा, उसने उसे आज्ञा दी कि वो विधियों और आज्ञाओं का पालन करे, यहोशू 1:8, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहां दाऊद फिर से समृद्ध राज्य को आज्ञाओं के पालन करने से जोड़ता है। विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करना, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के नियम एक खुश और समृद्ध जीवन के लिए है। हमारे जगत को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के समान ही आत्मिक नियम भी होते हैं। हम भौतिक नियमों को अच्छी तरह मानते हैं। आप हवा में तैरने की अपेक्षा कुर्सी पर आराम से बैठते हैं, क्यों? क्योंकि वहां एक नियम है जिसे हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बल प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। इस कारण हमने इस आकर्षण शक्ति को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, परंतु आवश्यक जानता हूं कि यह नियम है और मुझे उसका पालन करना है। अब मैं इस नियम को समझता नहीं हूं, परंतु मैं घर से बाहर निकलकर इस नियम को तोड़ता भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे करने से समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं इस नियम का दैनिक परीक्षण भी नहीं करता और ना ही इसे चुनौती देता हूं कि कहूं मुझे यह नियम समझ में नहीं आता और ये कहते हुए छत से कूद जाऊं कि मुझे इसके पालन की क्या आवश्यकता है। मुझे कष्ट भोगना होगा। मैं चाहे इस नियम को समझूं या ना समझूं, ये काम करेगा। इसी प्रकार बिजली का भी नियम है और प्राकृतिक के भी नियम है। हमें इन नियमों से लाभ उठाना सिखाया जाता है। हम इनका पालन करना सीखते हैं। हम उनका सम्मान करना भी सीखते हैं। इसी प्रकार से आत्मिक नियम भी है जो आत्मिक जीवन में लागू होते हैं, और हो सकता है अब तक हम इन्हें ना समझते हो कि वे कैसे कार्य करते हैं, तो भी वो कार्य करते हैं। इसलिए इन नियमों के साथ जीवन जीना और सीखना बुद्धिमानी है। उनका हम सम्मान करें और उनका प्रयोग बड़े लाभ के लिए करें। परमेश्वर ने ये आत्मिक नियम ठहराए हैं। यहां प्रसन्नता के नियम है, संपन्नता के नियम है। यहां बहुत नियम है जो हमारे जीवन में लागू होते हैं और परमेश्वर ने ठहराए हैं। मैं नहीं जानता कि वे कैसे काम करते हैं, पर इससे उनका काम करना बंद नहीं हो जाता। बहुत बार क्योंकि हम नहीं समझते इसलिए इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं ये मेरे मामले में सही नहीं है, मेरा विषय भिन्न है, और बहुत बार हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं ये सोचकर कि हमारा विषय तो एक अनोखा विषय है जिस पर ये नियम लागू नहीं होते, या हम इसे नहीं समझते इसलिए इनकार करते हैं। फिर आश्चर्य करते हैं कि हमें चोट क्यों लगती है। हमें आश्चर्य होता है कि हम इतना दुख और पछतावा क्यों है। हमें आश्चर्य होता है कि हमारे साथ इतनी समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के नियमों को अनदेखा किया है, उन आत्मिक नियमों का उल्लंघन किया है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। ये इस संसार में कैसा संभव हो सकता है कि जितना अधिक मैं दूसरों को दूंगा उतना अधिक मैं पाऊंगा। परंतु ऐसा ही बाइबल कहती है। लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मैं अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। मेरे पास एक खेत है और मैं उसमें 5 अनाज के दाने बोता हूं तो 4 फलवंत होने की आशा करता हूं, परंतु इससे अधिक मिलने की आशा नहीं है। यदि मैं 1 बोरा बीज लेकर खेत में बोऊं तो क्या होगा? जो अधिक बोता है वो फसल के समय अधिक काटता है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये नियम कार्य करता है। मुझे पता नहीं ये कैसा कार्य करता है, परंतु कार्य करता है। जितना अधिक आप परमेश्वर को देते हैं उससे अधिक वो आपको देता है, दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ। ये एक आत्मिक नियम है। मैं बता सकता हूं ये कैसा कार्य करता है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि वो कार्य करता है। कुछ आत्मिक नियम भी है जो संसार पर लागू होते हैं, क्योंकि बहुत लोग इन नियमों को नहीं समझते, उनका प्रयोग नहीं कर पाते और उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब यदि आप कहें मैं बिजली के समान का तब तक प्रयोग नहीं करूंगा जब तक कि मैं बिजली के सब नियमों को ना जान जाऊं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि 2 तारों में से 1 तार में बिजली क्यों आती है, और मैं जानना चाहता हूं कि बिजली क्या तार के अंदर से या बाहर से चलती है, आदि आदि। उसके प्रयोग के लाभ देखिए। यदि आप बिजली के नियमों को समझने में लगे रहें तो आप उसका लाभ कभी उठा नहीं पाएंगे। ऐसे लोग भी है जो आत्मिक नियमों के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, मैं नहीं जानता ये कैसे कार्य करता है, इसलिए वे उनका प्रयोग नहीं करते और लाभ उठा नहीं पाते। परमेश्वर ने मूल रूप से समृद्धि के नियम दिए और आनंद मनाने के नियम दिए। भजन संहिता 1:1-3, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दाऊद ने पहले भजन को सुलेमान से जोड़ा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे तभी तू कृतार्थ होगा, अर्थात जब तू विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा। अब हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। 22:14-16, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किकार सोना और 10,00,000 किकार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकेगा, और तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। सोना चांदी पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। परमेश्वर के कार्य अधिकतर इसी रीति से पूरे किए जाते हैं। तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। अध्याय 22 पद 17 से लेकर 19 तक। फिर दाऊद ने इसराइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा ये कहकर दी कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है।